और ये सारा कुछ मीकात से बाहर करना होता है। अब मैं यहाँ ये बता दूं कि कुछ दो सर्कल्स इमेजिन लाइन सोचे, दो सर्कल सोचे, एक बड़ा सर्कल उसके अंदर एक और छोटा सर्कल, यानी एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक और छोटा सर्कल और उसके दरमियान में फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, यानी एक कंपस सोचे कि एक सेंटर में जहां कंपस रखा उसका दो सर्कल खेचे, एक छोटा और एक बड़ा। और सेंटर जो काबा है फॉर एग्जाम्पल, पहला सर्कल जो है वो समझे उसके अंदर अंदर हरम है, सेंटर से यानी काबे से जो पहला सर्कल है उससे उसको हरम, उसकी एक बाउंड्री लाइन है जो आप निशान रही हर रोड मेन रोड पे हुआ है कि यहाँ हदूद हरम लिखा होता है। अब उस हदूद हरम से बाहर वाला सर्कल जिसको मीकात कहते हैं, दो वर्ड मीकात और अंदर वाला हरम, ये दोनों के दरमियान में जो रहता है उसे कहते हैं हिल, उस एरिया को कहते हैं हिल, हे और लाभ हिल, और मीकात से बाहर जो रहते उसे आफाकी कहते हैं, आफाक से तो आफाकी है वो जहान वाला है वो उस मीकात से बाहर रहेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन कर दिए थे कि बाउंड्री लाइन को। अब हर एक के हुक्म थोड़े फर्क है, तो जिस जो कि आफाकी है जैसे ताइफ वाले लोग हैं जो मीकात से बाहर रह रहे हैं, तो उनको मीकात के अंदर जाने से पहले पहले ये एहराम पहनना है, जबकि वह हज उमरे के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले पहनना। जो हिल में है यानी कि जो दोनों सर्कल उसके दरमियान में रहता है हिल में रहता है उसको हरम के अंदर दाखिल होने से पहले पहनना, यानी कि हरम जो इनर सर्कल है उसके अंदर दाखिल होने से पहले पहनना। जैसे जिद्दा वाले लोग वो हिल में है, मीकात के अंदर है, हरम से बाहर है, उनको उस हरम के अंदर जाने से पहले पहले पहनना, वो घर से पहन ले, कोई इवन मीकात वाले से बाहर रहने वाले भी घर से पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ मीकात पे रुक जो मस्जिद बनी उस पर रुक के भी पहन सकते हैं। तो और जो हिल यानी कि जो हरम के अंदर है जो इनर सर्कल के भी अंदर रह रहा है वो क्या करे, तो वो फिर होगा कि अगर वो उमरा करना चाहता है यानी हज करना चाहता है फिर तो वहीं से पहन ले, फिर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। हज करना चाहता है अपने घर से कपड़े पहने एहराम पहने और हज के मीना चला जाए जो अभी जिक्र आएगा। हाँ जो इनर जो उमरा करना चाहता है हरम वाला शख्स वो हरम से बाहर आएगा यानी कि हिल में आएगा और वहां से पहन से जाएगा, और उसकी निशानदेही मुख्तलिफ जगहों पे हुई हुई है जिसे फनी मस्जिद आयशा कहा जाता है, तो वो भी एक्चुअली हरम के बाहर है, तो लोग इसलिए वहां चले जाते हैं, वहां चूंकि सारा इंतजाम हुआ हुआ है, वरना वहां जाना जरूरी नहीं, कहीं भी हरम से बाहर जा सकता है और वहां जाके एहराम की नीयत करके आ सकता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल घर से एहराम पहने चादर पहने और जब हरम के बाहर जाए तो वहां से नीयत कर ले कि जी कि मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ या उम्रे हज की नियत कर रहा हूँ, मतलब भाई कल्लाहुम्मा लब्बैक तल्बी पढ़ के और फिर अंदर आ जाए, इसको तल्बी कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो ये तो होगी नियत उसकी बात। अब ये शख्स जब रास्ते में जा रहा होगा तो उस पर एहराम की पाबंदियां होंगी, और वो क्या पाबंदियां हैं कि मर्द के लिए सर और चेहरा ढकना मना है, सर और चेहरा, औरत के लिए तो चेहरे पे कपड़ा ना लगे, ये एक है मुस्तकिल पर दो, यानी एक पाबंदी कपड़े के हवाले से, फिर खुशबू नहीं लगनी चाहिए और खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल खुशबू लगाना ये सारी मना है, और खुशबू को सूंघना भी नहीं चाहिए खुद से, हाँ आ जाए खुशबू तो कोई बात नहीं लेकिन खुद से उसको सूंघना नहीं चाहिए, और इवन ये भी लिखा है कि फल फ्रूट वगैरह को भी नहीं सूंघना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी खुशबू होती है, और इससे बचना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार साबुन इंसान आदतन यूज कर लेता है, वॉशरूम में गया साबुन पड़ा वो यूज कर लिया, तो ये बहुत मोहताज रहे जहन में रखे थे, अदरवाइज उसके फिर सरका या दम के हुक्म आ जाएंगे जो बाद में जिक्र करते हैं। फिर बदन के बाल नहीं काट सकता या तोड़ सकता खुद से, फिर नाखून नहीं काट सकता, फिर इसी तरह जो मेरिटल रिलेशनशिप नहीं रख सकता, इसी तरह शिकार नहीं कर सकता, वो कि अब वो नहीं किया जाता आमतौर पर तो इसलिए उसका इतना समझ नहीं आता, लेकिन पहले चूंकि खाने के लिए शिकार किए जाते थे इसलिए ये बहुत जिक्र होता था कि शिकार नहीं करना हराम की एहराम की हालत में, और इसी तरह अपने जिस्म से कोई जू नजर आए वो नहीं मारनी, कोई टिड्डी वगैरह फिर रही हो उसको नहीं मारना, ये सारी अगर मारेगा तो फिर उसकी कुछ ना कुछ उसको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। तो ये चंद चीजें हैं, खुशबू मेन है, जिस्म पर कोई चीज उसमें से जू वगैरह मारना इस तरह की चीज वो अहम है। और बाल काटना और तोड़ना वगैरह और नाखून काटना ये चीजें अहम है। अब ये ध्यान में रहे कि औरत के एहराम के मतलब जब जिक्र हुआ कि वो एरेटेज है उसके कपड़े, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मिलती है कि उन चेहरा कवर करने की बात आई तो उनका जिक्र आता है कि जब वो हज के सफर में जा रही थी तो उन्होंने अब चेहरे में कपड़ा कंटिन्यूस नहीं लगना चाहिए जिसके चेहरा खुला होता है, लेकिन उनकी हदीस में मिलता है कि जब कोई काफिला गुजरता है कोई लोग गुजरते हैं क्योंकि उस वक्त इतना रश नहीं होता था कि हर वक्त लोग सामने हो, तो कहते जैसे ही गुजरता वो अपना चेहरा कवर कर लेती थी, यानी कि हज के पहले वाले हुक्म यानी एहराम से पहले वाले हुक्म पे आ जाती थी चेहरा कवर कर लेती थी, वो जब गुजर जाता था फिर खोल देती थी, तो ये वो उस वक्त करती थी। अब क्योंकि रश बहुत है हर वक्त ही नामहरम हज हर तरफ होते हैं, तो अब उसको अलमाना तरीका बताया कि ऐसा कोई तरीका अपना ले जिससे चेहरा चेहरे पर कंटिन्यूस कपड़ा ना लगे, चेहरा क्योंकि गलत समय होती है चेहरा खोलने की इजाजत दी गई, खोलने की इजाजत नहीं गई वो एक अलहदा हुक्म है, यहाँ पे चेहरे पे कंटिन्यूस टच ना हो कपड़ा ये एक अलहदा हुक्म है। अब दोनों को कंबाइन करने का करना है क्योंकि दोनों हदीस मिलती हैं, या तो ऐसी कोई हदीस ना मिलती हो कि हज पे चेहरा कवर नहीं किया गया या किया गया, वो मिलती है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला कि वो चेहरा कवर कर लेती थी जब कोई नामहरम सामने आता था। तो अब दोनों में अमल करने का तरीका ये है कि कोई भी तरीका ऐसा अपना ले जिससे कंटिन्यूसली एक दिन या एक रात चेहरे पे कपड़ा ना लगता रहे। उसका तरीका एक ये अडॉप्ट किया गया कि पी कैप पहन ले और उसके आगे से कपड़ा लटका दे तो वो कंटिन्यूस नहीं लगता, क्योंकि हवा से कभी कभी लगता है लेकिन कंटिन्यूस नहीं लगता, यानी बैठे होंगे तो नहीं लग रहा होगा, तो इस तरह का कोई ना कोई तरीका अपना सकते हैं। तो ये औरत के हराम में खास बात, क्योंकि ये जहन में रहे कि गुनाह से बचना है। अब अगर औरत ने चेहरा खोला और किसी ने उसको देखा तो अब दोनों गुनाहगार होंगे, हदीस में आता है कि देखने वाला तो है ही लेकिन जिसकी जो देखने का बायस बन गया उसको भी गुनाह मिलता है, यानी उस औरत को, क्योंकि उसने क्यों मौका दिया अगले को देखने का पब्लिक प्लेस पे, ऑब्वियसली कोई किसी खेमे में झांक के देख रहा है तो वो तो श्योर उसका ही गुनाह है जो देखने वाले, लेकिन पब्लिक प्लेस पे क्यों ऐसे औरत ने दूसरे को मौका दिया कि वो गुनाह में मुब्तला हो। तो एहराम पहन के जब सफर शुरू हुआ तो सारे वो फिलॉसफी जो भी जिक्र हुई जो मकसद जिक्र हुआ जो बैकग्राउंड जिक्र हुआ उसको जहन में लाया कि मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का सफर है, ये आखिरत का जैसे सफर है उसकी इसमें सिमिलैरिटीज मौजूद है, ये सारा कुछ मंजर सामने ला के अपने आप को कैसे तैयारी करें, दूसरों को अवॉइड करे, गप शप से को दूर से दूर रहे, अपने अपने दिल के अंदर सोचे कि देखो मैं होने वाला है सब कुछ मेरे साथ। अब रास्ते में तलबीह पढ़ता रहे यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक जितना पड़ेगा, हर वक्त का एहसास जिक्र होता है और गफलत कहते हैं उस जिक्र से गाफिल रहने को, तो हज और उम्रे में एहराम की हालत का जिक्र जो है वो तलबीह है, तो जो नहीं करेगा समझे वो गाफिल है। तो गफलत अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि हज में जहाँ आयात अल्लाह ने जिक्र की अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का कसरत जिक्र करो हज के अंदर, तो ये मतलूब है हर इबादत के अंदर 24 घंटे, तो वक्तन फवक्तन लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक मर्द ऊंची आवाज में, इतनी आवाज कि अपने कानों तक या साथ वाले को मैक्सिमम पहुंचे, बहुत ऊंची दूरी नहीं है, और औरतें आहिस्ता आवाज में यानी जो दूसरे को ना सुने इस तरह से तलबी पड़ती है। और खासतौर पर है कि जब ऊंची नीची जगह पे जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कुछ सीढ़ियां उतर रहे हैं, कोई गाड़ी बुलंदी पर जा रही है, गाड़ी नीचे उतर रही है, कोई हालत चेंज हो रही है, गाड़ी से चढ़ रहे हैं, गाड़ी में से उतर रहे हैं, तो इन सारी हालतों में पढ़ना ये मसनून है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी से उतरते हैं, ऊंटनी पर चढ़ते हुए इस तरह सारी पोजिशन पे पढ़ते थे। और फिर मक्का मुकरमा जब पहुंच गया तो मसनून है कि गुसल करें, मक्का मुकरमा पहुंच के हाजिरी से पहले खाना काबा में जाने से पहले, लेकिन जरूरी नहीं है, तो इसलिए हो सके तो कर ले, नहीं मौका मिलता तो जरूरी नहीं है। और फिर पूरी कैफियत तारी हो कि अल्लाह ताला से मुलाकात, ये एक्चुअल है यानी कि सिंबॉलिक तौर पे रखा ही इसलिए सारा कुछ है कि मैं ये करूं, तो ये सारी कैफियत तारी करनी चाहिए अपने।